ओम शांति। कल आप सभी स्वयं की पहचान ली, स्वयं से पहचान हो गया ना? हुआ क्या नहीं हुआ? हो गया, स्वयं को रियलाइज किया। तो कल गीता दीदी आपको अपने से मिलाया और आज आपके सन्मुख उपस्थित है। आज का सत्र है परम सत्य की पहचान, जो खजानों के खान सुप्रीम बिजनेसमैन आप उनसे मिलाने के लिए आज ये सत्र पर उपस्थित है। राजयोगी ने गीता दीदी नम्रता की मूरत आपको परम सत्य की पहचान देने के लिए आज आपसे बातें करेंगे और आप भी बहुत अच्छी तरह से अलर्ट होकर के सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्र है। आज की इस सत्र से आप सभी को एक बहुत बड़ी खजानों की खान मिल जाएगी, जिससे आप पूरी जिंदगी भर में माला माल हो सकेंगे और सदा खुशी में रह सकेंगे। ओम शांति। आप शुरू करेंगे गीता दीदी।
ओम शांति। राजयोग के प्रथम सत्र में स्वयं का परिचय प्राप्त किया और आपने ये समझ लिया कि आत्मचिंतन राजयोग की आधारशिला है। स्वचिंतन करने से हम अपने बिखरे हुए मन को समेट सकते हैं और स्व में स्थित कर सकते हैं। अब हमें अपने मन और बुद्धि किससे जोड़ने हैं, हमें योग किससे लगाना है, वो परम शक्ति परमात्मा कौन है? तेलुगु ट्रांसलेशन अवेलेबल ऑन फ्रीक्वेंसी नंबर 89.5। जिस परम पिता परमात्मा को हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, प्रभु, परमेश्वर कहकर याद करते रहे हैं, ये भी हम जानते हैं कि परमात्मा एक है, गॉड इज वन कहा जाता है, सबका मालिक एक कहा जाता है। और ये विवेक की बात भी है कि परम, सुप्रीम, ऊंचे ते ऊंच एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते, अनेक नहीं हो सकते। जब परमात्मा एक हैं, तो उनका सही परिचय भी एक ही होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि एक परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, अनेक मतें हैं, जिनको श्री राम में श्रद्धा है वो कहते हैं श्री राम ही भगवान है, जिनको श्री कृष्ण से प्यार है वो कहेंगे श्री कृष्ण ही परमात्मा है। कोई नेचर को गॉड समझते हैं कि चारों ओर जो इतना सुंदर ये प्रकृति का सौंदर्य फैला हुआ है, ये प्रकृति ही परमात्मा है। कोई आत्मा को परमात्मा कहते हैं, अपने आप को भगवान कहलाते भी हैं, और कई सब में भगवान है ऐसी भावना रखते हैं। तो एक परमात्मा के बारे में अनेक मतें हो गई हैं, अनेक मान्यताएं हो गई हैं। सिद्ध है कि परमात्मा का सही परिचय हम नहीं जानते हैं। हमारी बुद्धि में परमात्मा के बारे में जो कुछ ज्ञान है, या तो हमने वो शास्त्रों से प्राप्त किया है, साधु संत ऋषि मुनियों से प्राप्त किया है, या हमें अपने परिवार के तरफ से जो मान्यताएं मिली हैं। माना मनुष्य आत्माओं ने परमात्मा के बारे में जो सोचा, समझा, अनुभव किया, वो ही हमारी बुद्धि में है। अब हरेक का अपना चिंतन है, अपनी साधना है, अपनी बुद्धि की शुद्धि है, तो उसी का रिजल्ट अनेक मते हैं। परमात्मा का सत्य परिचय कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती। परमात्मा का सही परिचय स्वयं परमात्मा ही देते हैं। हम कहते हैं सत्य स्वयं प्रकट होता है। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता है। परमात्मा खुद सृष्टि पर आते हैं और अपना सत्य परिचय देते हैं। सद्ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, इसलिए हम सदा परमात्मा को ही कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से अपने सत्य परिचय की जो परिभाषा बताई है, पहले वो परिभाषा मैं आपके सामने रखूंगी कि परमात्मा का सही परिचय किसको कह सकते हैं, उनके सत्य परिचय की सत्य व्याख्या क्या है, उसकी क्या कसौटी है, क्या नापदंड है जिससे हम वेरीफाई कर सकें कि परमात्मा का सही परिचय किसको कह सकते हैं। मैं 5 बातें आपके सामने रखूंगी। पहली बात, परमात्मा का सही परिचय हम उसे कह सकते हैं जिस परिचय को सभी मान्य करें। परमात्मा कोई एक धर्म, कोई एक देश, कोई एक जाति समाज के पिता नहीं। परमात्मा समग्र विश्व के पिता है। सर्व धर्म की आत्माओं के परम पिता है। इसलिए परमात्मा का सही परिचय उसे ही कह सकते हैं जिसे विश्व के मुख्यतः सभी धर्म मान्य करते हैं। कुछ माने दूसरे न माने, उसको परमात्मा नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात, परमात्मा उसे कहेंगे जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे। हम सब जानते हैं कि जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी अवश्य होती है। जो शरीर धारण करते हैं वे शरीर छोड़ते भी हैं। परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हो, क्योंकि जो जन्म लेता है, शरीर धारण करता है, वो प्रकृति के बंधन में बंधता है। शरीर क्या है? 5 तत्व हैं, प्रकृति है। जो शरीर धारण करते हैं प्रकृति के बंधन में, स्थल और काल के बंधन में बंधते हैं, कर्म बंधन में बंधते हैं। आत्मा शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर नहीं रह सकती है, वो कर्म बंधन में बंधते जाते हैं, देह संबंध में बंधते हैं। बच्चा पैदा होता है, परिवार का सभ्य बन जाता है, वो किसी का बेटा है, भाई है, पोता है, रिलेशन में बंधने लगते हैं, सुख दुख के बंधन में बंधते हैं। क्योंकि जो कर्म हम करते हैं उनके फल भोगने के लिए भी हम जिम्मेवार हो जाते हैं। परमात्मा उसे कहेंगे जो जन्म मरण के सुख दुख के देह संबंध के कर्म के प्रकृति के बंधन से न्यारे हों। इसलिए परमात्मा को हम सदा मुक्त सदा स्वतंत्र कहते हैं। और देखिए हम सभी भक्ति में भी सदा परमात्मा से क्या मांगते हैं, हमें दुखों से छुड़ाओ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, हमें इस भव के फेरे से छुड़ाओ। हम सदा परमात्मा से मुक्ति मांगते रहे हैं, अंडरस्टूड है कि जो स्वयं मुक्त होगा वो ही तो हमें मुक्ति दे सकेगा। इसलिए परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सभी बंधनों से सभी लेपों से सभी प्रभावों से मुक्त है। तीसरी बात, परमात्मा उससे कह सकते हैं जिनके कोई माता पिता शिक्षक गुरु नहीं है, जो स्वयं ही परम है, उनके ऊपर और कोई आत्मा नहीं है जो उनके माता पिता गुरु शिक्षक स्वामी शेठ बन सके। इसलिए परमात्मा के लिए हम कहते हैं सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम प्रिसेप्टर, उनके ऊपर और कोई नहीं। इसलिए हम उससे पिताओं का पिता, शिक्षकों का शिक्षक, गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, नाथों का नाथ उसे कहा जाता है। और चौथी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सदा परम है, ऊंचे से ऊंच, हाईएस्ट ऑन हाई, सर्वोच्च, जो सदा अपने परम गुणों में, परम स्थिति में, परम कर्तव्य में स्थित है, अपरिवर्तनशील एक रस है। ऐसे नहीं आज परम है धीरे धीरे मध्यम हो जाएंगे, नहीं। इसलिए केवल परमात्मा की महिमा में सदा शब्द हम लगाते हैं, सदा पावन, सदा मुक्त, सदा शिव उसे कहते हैं। इसलिए लोग कहते भी हैं कि परमात्मा को पहचानना आसान है, क्योंकि वे सदा अपने गुणों में स्थित है, सदा प्यार के सागर है, सदा रहम दिल है। और ही लोग कहते हैं कि इंसान को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि हर घड़ी वो अपना रंग बदलता रहता है। और पांचवी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सर्व ज्ञाता है और सदा दाता है। सर्व ज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत आलोक परलोक को जानते हैं, सारे यूनिवर्सल ट्रुथ्स को जानते हैं। इसलिए हम उसे ज्ञान का सागर कहते हैं, नॉलेजफुल कहते हैं। परमात्मा के लिए हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वज्ञ है। मनुष्यात्माओं के लिए हम कहते हैं कि मनुष्यात्माएं अल्पज्ञ है। हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है, हम जानते हैं और भूल जाते हैं, हम स्मृति विस्मृति को प्राप्त करते हैं। परमात्मा संपूर्ण सत्य ज्ञान के सागर है, इसलिए हम उसे सदा जागती ज्योत कहते हैं। ज्ञान की तुलना प्रकाश के साथ की जाती है, और वे सदा दाता है, सदा दाता है, देते ही रहते हैं, देने के लिए ही आते हैं। इसलिए हम उसकी महिमा में गाते हैं, शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सदगति दाता, वर दाता। परमात्मा सदा दाता है। हम आत्माएं सदा दाता नहीं है, हम सदा दाता है नहीं। बेशक हम मनुष्य आत्माएं पहले दाता थे, देवता थे। देवता मीन्स देने वाले। भारत को देव भूमि कहते, देवी देवता माना दाता देने वाले। इसलिए देवी देवताओं के हाथ कैसे बताते हैं, दाता वरदाता। लेकिन आज हम देवता नहीं रहे हैं, आज हम क्या बन गए हैं, क्या बन गए, लेवता, देवता नहीं रहे, लेवता बन गए, लेने वाले बन गए। हमें चाहिए चाहिए चाहिए, हम निस्वार्थ भाव से कुछ भी नहीं कर पाते। परमात्मा के सत्य परिचय की इस परिभाषा की पांचों ही बातें बुद्धि में रखकर अब आप विवेक से सोचिए, सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते हैं? सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते हैं? हम तो भावना से सबको भगवान मानते रहे हैं, पर सत्य क्या है? परमात्मा सिर्फ भावना से मानने का विषय नहीं, परमात्मा सत्य है, उसे यथार्थ रूप से हमें जानना है। तो इस परिभाषा को बुद्धि में रखकर अब आप विवेक से बताइए, क्या आप और मेरे जैसे साधारण मानव शरीरधारी मनुष्यात्माओं को परमात्मा कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं। हम मनुष्यात्माएं परमात्मा की याद से महात्मा बन सकते हैं, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा कोई पोस्ट, पोजीशन या डिग्री नहीं है जो हम पुरुषार्थ करके प्राप्त कर ले। परमात्मा कोई बनता नहीं है, अनादि अविनाशी एक परम आत्मा है ही, कोई नए परमात्मा तैयार नहीं होते जाते। इसलिए हम अपनी बुद्धि में ये सत्य प्रथम बात स्पष्ट कर ले कि कोई भी देहधारी को परमात्मा नहीं कह सकते। जैसे एक बच्चा पिता समान रूपवान हो सकता है, बुद्धिवान, धनवान, विद्वान, बलवान हो सकता है, लेकिन पिता पिता है और पुत्र पुत्र है, रचयिता रचयिता है, रचना रचना है। हम परमात्मा जैसे बन सकते हैं, परमात्मा ही नहीं बन जाते। इसलिए सबसे पहली बात बुद्धि में ये स्पष्ट कर लीजिए, जन्म मरण के चक्र में आने वाली कोई भी शरीरधारी मनुष्य आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। अंडरस्टूड है? दूसरा सत्य कि जो भी साधु सन्यासी हैं, ऋषि मुनि हैं, गुरु विद्वान पंडित आचार्य संत महंत जो भी हैं, वे महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। वे महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा की याद से ही महान बने हैं। हम उनको महात्माएं कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा का सही परिचय न होने के कारण कोई थोड़ी भी रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाते हैं, लोग उनको ही भगवान समझने लगते। लेकिन परमात्मा रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने चिंतन में लिखा है कि जो छोटे जादूगर होते हैं, वे छोटे छोटे जादू करते हैं। परमात्मा महान जादूगर है। वो अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार जादू मंत्र नहीं करते हैं। वे हमारे समूचे जीवन को श्रेष्ठ बना देते हैं। तीसरी बात, जो भी धर्म स्थापक हुए हैं, इतिहास आप जानते हैं कौन कौन धर्म स्थापक हुए हैं, जिन्होंने इस सृष्टि पर आकर अपने अपने धर्म की स्थापना का कार्य किया है। कौन कौन धर्म स्थापक हुए? चाहे इस्लाम के पितामह अब्राहम हुए, यहूदियों के हजरत मूसा हुए, क्रिश्चियनों के जीसस क्राइस्ट हुए, गौतम बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, शंकराचार्य जी हुए, गुरु नानक जी हुए, मोहम्मद पैगंबर हुए, अशो जरथुस्ट हुए, ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। और इन धर्म स्थापकों ने स्वयं ही सत्य कहा है कि हम तो उस गॉड के मैसेंजर है, हम उस खुदा के पैगंबर हैं, हम परमात्मा के पुत्र हैं। इन धर्म स्थापकों ने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा, ये उनके फॉलोवर्स होते हैं जो आगे चलकर उस परम शक्ति परमात्मा को भूल जाते हैं और अपने धर्म स्थापक में ही सीमित हो जाते हैं। तो ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। और चौथी बात, बहुत विवेक से और निष्पक्ष भाव से हमें समझनी है कि हिंदू भाई बहने जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, कितने देवी देवताओं को मानते हैं, कितने? जिन भी देवी देवताओं को मानते रहे हैं, पूजते रहे हैं, ये देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। चाहे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, श्री लक्ष्मी नारायण है, श्री राधे कृष्ण, श्री राम सीता है, श्री अम्बा दुर्गा सरस्वती है, श्री गणेश हनुमान महाकाली हैं, जिन भी देवी देवताओं को हम पूजते हैं वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो एक है, देवी देवताएं तो अनेक हैं। और इन देवी देवताओं को सभी धर्म वाले मान्य नहीं करते। परमात्मा तो उससे कहेंगे ना जिसे सभी धर्म मान्य करे। आप और धर्म की बात छोड़िए, क्या हिंदू धर्म के सभी संप्रदाय भी सभी देवी देवताओं को मानते हैं? मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो हम उससे सर्वधर्म की आत्माओं के परम पिता परमात्मा कैसे कह सकते हैं? हम हर देवी देवता के जन्म की, जीवन की, कईयों के मृत्यु की पूरी कथाएं सुनाते, जीवन गाथाएं बताते हैं। हम इन देवी देवताओं के माता पिता बंधु गुरु सखा संबंध बताते हैं, उनकी पालना लेते बताते हैं। हर देवी देवता को श्रेष्ठ कर्म करते हुए बताते कि वे आए ही इसलिए, अवतरित हुए ही इसलिए कि असुरों का संहार करने और दुखियों को सुखी बनाने। हम उनको श्रेष्ठ कर्म करते हुए दिखाते और उनके श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप हम उन देवी देवताओं को दैवी राजाई भोगते हुए दिखाते हैं, स्वर्गीय सुखों को भोगते हुए दिखाते। आप देखिए हर देवी देवता के मस्तक पर रत्न जड़ित ताज बताते हैं, हम उनको सिंहासन पर बैठे हुए बताते हैं। तो ये ताज, ये तख्त राजाई के निशाने, राम राजा लॉर्ड कृष्णा कहते, राजाई भोगते हुए बताते हैं हर देवी देवताओं को। सोने चांदी हीरे मोती के वस्त्र अलंकार आभूषणों से सज्ज बताते हैं, ये स्वर्गीय सुखों की निशानी। तो जो भोक्ता है उसे परमात्मा नहीं कह सकते हैं। परमात्मा की महिमा में कौन से विशेषणों का हम प्रयोग करते हैं कि वे अजन्मा हैं, अकर्ता है, अभोक्ता है, निराकार निरंजन कर्मातीत स्वयंभू से कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा स्वरूप है जो सभी धर्मों को मान्य है, जिनके माता पिता नहीं बताए हैं, स्वयंभू जिसको बताया गया है, ऐसा कौन सा स्वरूप है? कोई स्वरूप जो सभी धर्मों को मान्य हो, ऐसा कोई स्वरूप है? है कौन सा स्वरूप है? कौन सा स्वरूप है? क्या उत्तर आता है? तो देखिए, मुंझने की बात नहीं है। परमात्मा को जानना बहुत सहज है। परमात्मा शब्द ही परमात्मा का परिचय देता है। परमात्मा मीन्स परम आत्मा। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा भी अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा रूप से परम नहीं है, अपने गुणों कर्तव्यों से परम, ऊंचे से ऊंचे। इसलिए जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, हमारे अविनाशी पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। एक मनुष्यात्मा का पिता कैसा होता है? मनुष्य होता है। एक जानवर का पिता जानवर है, पंछी का पिता पंछी है। हम ज्योति बिंदु आत्माओं का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसलिए हम उसकी महिमा में कहते हैं, रूप ज्योति बिंदु हैं, लेकिन गुणों के सिंधु हैं। जैसे भौतिक शक्ति का स्रोत अणु अति सूक्ष्म है, शक्ति विराट है, परमात्मा रूप से ज्योति बिंदु है, लेकिन ऑल माइटी है। परमात्मा का ये दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप विश्व के सभी धर्मों को भी मान्य है। चित्र में आप देखिए, ज्योति बिंदु परमात्मा को हिंदू भाई बहने ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में पूजते। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। शिवलिंग शिवालय हर शहर गांव गली गली घर घर में इवन जंगलों में भी शिवालय पाए जाते। परमात्मा इतने बड़े लिंगाकार नहीं है। ये भक्ति में ज्योति बिंदु परमात्मा का पूजन करने के लिए जो प्रतीक बनाया गया वो है ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग। इसलिए रामेश्वर में श्री राम को भी शिव का पूजन करते हुए दिखा गए। इवन आप वृंदावन गोपेश्वर में जाएंगे, श्री कृष्ण को भी शिव के आगे नमन करते हुए दिखाया। एक और विवेक की बात आपको बताएं, शंकर जी को भी शिवलिंग के आगे ध्यान अवस्था में बताते हैं। ऐसे चित्र देखे हैं, आगे शिवलिंग है और शंकर को तपस्या करते हुए दिखाते हैं। हम शंकर जी को कहते ही हैं तपस्वी मूरत, योगी कहते हैं। सोचने की बात है, शंकर जी स्वयं परमात्मा है तो वो किसके ध्यान में बैठे? परमात्मा से ऊपर तो कोई है ही नहीं ना जिसका ध्यान करना पड़े। शंकर जी ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, मीन्स उनसे भी ऊपर कोई परम शक्ति है। उस परम शक्ति, कल्याणकारी शक्ति को ही शिव कहा है, जिसको ही ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग के रूप में हम पूजते हैं। इसलिए देवों का देव, त्रिदेव रचयिता ज्योति बिंदु परमात्मा है। इसी की यादगार शिवलिंग पर हम तीन रेखाएं करके ऊपर बिंदु करते हैं, त्रिदेव रचयिता ज्योति बिंदु परमात्मा है। मुस्लिम भाई बहने तो स्पष्ट कहते हैं अल्लाह नूर है, परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। हिंदी में हम कहते हैं यही बात, वे अपनी भाषा में कहते हैं अल्लाह नूर है। नूर मीन्स प्रकाश, ज्योति। इसलिए आज तक भी मुस्लिम भाई बहने मक्का हज करने जाते हैं, वहां जो काबा की इमारत है उसके पास शिवलिंग आकार का प्रतीक लगा हुआ है, जिससे संग ए अस्वद कहते हैं, और उसको मुस्लिम भाई बहने चूमते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बौद्धिस्ट भाई बहने, विशेषकर जापान के महायान पंथी बौद्धिस्ट, शिवलिंग आकार का प्रतीक सामने रखते हैं और उनसे ध्यान केंद्रित करते हैं। उस प्रतीक को शांतिदाता कहते हैं, जैपनीज लैंग्वेज में चिनकानशेकी कहते हैं। और आप गौतम बुद्ध को देखिए, महावीर स्वामी को देखिए, हम तपस्या करते हुए दिखाते हैं, ध्यान अवस्था में दिखाते हैं तो वो किसके ध्यान में बैठे, किससे बुद्धत्व मिला, वो है परम शक्ति परमात्मा जिससे अवेयरनेस आती है, जागृति आती है। क्राइस्ट ने भी स्पष्ट कहा है गॉड इज लाइट। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आई एम ए सन ऑफ गॉड, और गॉड के लिए उन्होंने कहा है गॉड इज लाइट। इसलिए क्रिश्चियन भाई बहने मोमबत्ती जलाते हैं और साइलेंस में प्रेयर करते हैं, ओ काइंडली लाइट उससे कहते हैं। गुरु नानक जी ने तो एक निराकार की ही महिमा की, एक ओंकार निराकार सतनाम कर्ता पुरुष अकाल मूर्त की महिमा की। पारसी भाई बहने भी परमात्मा के ज्योति स्वरूप को आतश अग्नि के रूप में पूजते। हजरत मूसा को भी, यहूदियों के हजरत मूसा को भी प्रथम साक्षात्कार ज्योति स्वरूप के हुए थे, प्रकाश के हुए थे। तो विश्व के मुख्यतः सभी धर्म और उनके आद्य धर्म स्थापकों का इशारा एक ही है कि परमात्मा एक है, निराकार, हमारे जैसा शारीरिक आकार नहीं है, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसलिए हमें ये बुद्धि में स्मृति धारण करनी है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। ये जो देखने में आ रहा है वो मैं नहीं हूं, मेरा शरीर है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, मेरे अविनाशी पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनको शरीर नहीं है, इसलिए हमारे जैसा शारीरिक संज्ञावाचक नाम नहीं है। हमारे नाम शरीर से हैं। मेरा ये शरीर छूट जाए तो मेरा ये नाम भी समाप्त हो जाएगा ना, मैं नया शरीर लूंगी, मुझे नया नाम मिलेगा ना। हमारे नाम शरीर से हैं, परमात्मा का नाम गुणों से है, कर्तव्यों से है। वे सारे विश्व का कल्याण करते हैं, इसलिए उनका मूल नाम शिव है। शिव मीन्स कल्याणकारी, शिव मीन्स बेनिफैक्टर, और इसलिए परमात्मा के लिए हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा सत्य है, अविनाशी है। शिव कल्याणकारी, सुंदर माना सदा पावन है। उनके अनेकानेक गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम भक्ति में हैं, उनकी महिमा में अनेक नाम है। ओंकारेश्वर, विश्वेश्वर, महाकालेश्वर, पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर, अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, उनके अनेक गुणवाचक, अनेक कर्तव्यवाचक नाम हैं, पर हमें ये नामों की माला फेरने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मतलब ईश्वर के गुण और कर्तव्य से है, इसलिए हम उनके मूल नाम को याद रखते हैं, परमात्मा शिव, जिसको प्यार से यहाँ हम शिव बाबा कहते हैं। बाबा मीन्स पिता, बाबा माना कोई साधु बाबा की बात नहीं है, बाबा मीन्स पिता, गॉड फादर कहते हैं। परमात्मा हमारा पिता है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हमारे लिए सबसे खुशी और गर्व की बात है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। खुशी है सबको, नशा है हम भगवान के बच्चे हैं। देखो एक भी नहीं बोल रहा है, कितने आश्चर्य की बात है। दुनिया में कोई मिनिस्टर, ऑफिसर, उद्योगपति के बेटे को भी नशा होता है कि मेरे पिता ऑफिसर हैं, मिनिस्टर हैं, उद्योगपति हैं, और हमें नशा ही नहीं है, हम भगवान के बच्चे हैं। हाँ, कितना बड़ा आश्चर्य है, देखिए। ना हम अपने आप को जानते हैं और ना पिता परमात्मा को जानते हैं, ना हमारा उनसे संबंध है, ना प्राप्ति है, इसलिए खुशी भी नहीं है। वरना हम आत्माओं को कितना गौरव होना चाहिए, हम उस ऑलमाइटी के बच्चे। जिस पिता परमात्मा की भक्ति में हम कितनी महिमा करते हैं, हम गाते हैं कि सारे समुद्र की स्याही बनाई जाए, पूरी पृथ्वी का कागज बनाया जाए, हर वृक्ष की डाली की कलम बना दी जाए और स्वयं सरस्वती लिखें, तो भी हे ईश तब गुणा नाम पारम न याति। गाते हैं ना, तेरी महिमा अपरंपार। स्वयं परमात्मा ने अपनी महिमा बताई है कि परमात्मा संपूर्ण सत्य ज्ञान, सर्व गुण और सर्व शक्ति के सागर है और दाता है। इसलिए हम गाते हैं, तू प्यार का सागर है, शांति के सागर है, दुख हरता सुख करता है, सदा पावन, सर्वशक्ति मान, सर्व के सदगति दाता है। चित्र में बताया है कि परमात्मा इन गुणों के इटर्नल फाउंटेन के समान है, सागर है, भंडार है और सदा दाता है। सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता की अजस्र धाराएं बहाते ही रहते हैं। ऐसे पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं, कभी अपने आप पर सोचते हो हा? कि पिता शांति का सागर शांति दाता है और उनके हम बच्चे अशांत क्यों है हा? वे सदा पावन है और हम पतित विकारी क्यों है? अपने आप पर कभी विचार चलता है? कोई राजा का बेटा राजकुमार भीख मांगे तो उसको देखकर आपको क्या विचार चलेंगे? क्या विचार चलेंगे कि अरे राजा का बेटा और मंगता क्यों है? लगता है राजा से कोई संबंध नहीं है। अपने आप के लिए सोचना है ना। परमात्मा पिता के हम बच्चे, हम दुखी अशांत क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को जानते नहीं हैं, पिता परमात्मा को पहचानते नहीं हैं, हमारा उनसे संबंध नहीं रहा। हम संबंधों का वर्णन करते हैं। कौन सा श्लोक बोलते हैं? परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंध है, उसका वर्णन करते हुए त्वमेव माता श्च पिता त्वमेव गाते हैं ना। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले, गाते हैं ना। हम संबंधों का वर्णन करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए प्राप्ति नहीं। क्या आपके बच्चे रोज घर में बैठकर आपके सामने रोज वर्णन करते हैं क्या? तुम मेरी मम्मी हो, तुम मेरे पापा हो, तुम मेरे दादा हो? हाँ नहीं, बच्चे को परख है, निश्चय है यही मेरे माता पिता है। वर्णन करने की जरूरत नहीं है, हमें परखने की निश्चय करने की जरूरत है कि परमात्मा ही मुझात्मा के असली अविनाशी कल्याणकारी माता पिता सर्वस्व है। ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर परमात्मा अल्पकाल की प्राप्ति का कार्य नहीं करते। परमात्मा वो कार्य करते हैं जो कोई मनुष्य आत्माएं नहीं कर सकती हैं। चित्र में बताया है परमात्मा हम पतितों को पावन बनाते हैं। जब सारा विश्व सभी आत्माएं विकारों के पंजे में फंस जाते हैं, तब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं और हमें अज्ञान अंधकार विषय वासनाओं से मुक्त करते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं। न सिर्फ पावन बनाते हैं, हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। हम गाते हैं ना, नर ऐसी करनी करे तो वो श्री नारायण बन सकता है। नारी ऐसी करणी करे वो श्री लक्ष्मी बन सकती है। वो कौन से कर्म हम करें जो हम मनुष्य से देवता बन सके, वो ही परमात्मा हमें सिखाते हैं। और ना सिर्फ हम मनुष्यत्माओं को देवता बनाते हैं, परमात्मा सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। हम कह सकते हैं आज के कलियुगी संसार ही नरक है, परमात्मा उसे सतयुगी दैवी संसार स्वर्ग बनाते हैं। विश्व परिवर्तन विश्व पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। और ऐसा कार्य करने के लिए परमात्मा स्वयं सृष्टि पर आते हैं। अगर परमात्मा सृष्टि पर कभी आते ही ना हो, हमें मिलते ही ना हो, तो हम उससे क्यों याद करते हैं, हम क्यों उसे बुलाते हैं, हमने कैसे जाना कि वो प्यार का सागर है। जरूर परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, हम आत्माओं से मिलते हैं, हमने उनसे सुख आनंद प्रेम प्राप्त किया है, तब तो हम उसे याद करते हैं। तो परमात्मा सृष्टि पर कब आते? हरेक भारतवासी जानते हैं परमात्मा सृष्टि पर कब आते हैं। कौन सा श्लोक बोलते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानीर भवती। हरेक भारतवासी जानते हैं जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है, अधर्म अति फैल जाता है, तब परमात्मा स्वयं सृष्टि पर आते हैं। अधर्मों का अंत सत धर्म की स्थापना करते हैं, दुष्ट कर्मियों का विनाश और सत कर्मियों की रक्षा करते हैं। ये हम सब जानते हैं, पर मेरा आपसे प्रश्न है कि जब जब माना कब? ये आप जानते हैं कि जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है, तो धर्म की अति ग्लानी कब होती है? कब होती है? कलियुग का अंत। कलियुग का अंत अति धर्म ग्लानी का समय है, इसलिए कलियुग अंत सतयुग आदि के संधिकाल संगम युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। और हम कलियुगी, चित्र में आप देखिए, एक तरफ हेल कलियुग नरक बताया है कि कलियुगी नर नारी परमात्मा का संगम युग में जो ज्ञान यज्ञ रचा है, अभी आप आए हैं तो ये क्या है? ज्ञान यज्ञ है ना? यहाँ द्रव्य यज्ञ नहीं है, इसमें जौ घी तिल होमने की बात नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ है। परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं। जो कलियुगी नर नारी इस ज्ञान यज्ञ में अर्थात इस सत्य ज्ञान और योग की शक्ति से खुद की बुराइयों को स्वाहा करेंगे, वे आने वाली सतयुगी दुनिया में जाने के योग्य बनेंगे। इसलिए कलयुग अंत, सतयुग आदि के संधि काल संगम युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। वे आकर हम कलयुगी पतित मनुष्य आत्माओं को पवित्र योगी बनाते हैं। वो ही पवित्र योगी आत्माएं दिव्य गुणों को धारण कर आने वाली सतयुगी दुनिया में देवी देवता बनते हैं। यही तो संदेश आप सबको देना है, तभी तो आप सबको यहाँ बुलाया है कि वर्ल्ड साइकिल में अभी जो समय चल रहा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय चल रहा है। स्वयं परमात्मा हमें पतित से पावन, कलियुगी से सतयुगी बना रहे हैं और ऐसा दिव्य कार्य करने के लिए परमात्मा स्वयं सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं। स्पष्ट है परमात्मा जरूर कहीं और रहते हैं जहां से कलयुग अंत संगम युग में सृष्टि पर अवतरित होते हैं। अगर परमात्मा इस दुनिया में ही होता तो हम क्यों कहते हैं कि आप आओ, क्यों हम कहते हैं कि भगवान अवतरित होते हैं। आप यहाँ हाजिर हैं, उपस्थित हैं, तो आप यहाँ है ही है ना? मैं थोड़ी कहूंगी आप आएंगे, आप आने वाले हैं, आप आते हैं, आप है ही है। परमात्मा अगर इस दुनिया में ही होता तो हम क्यों कहते हैं कि आप आइए, आप अवतरित होते हैं। तो जरूर परमात्मा का असली निवास स्थान कहीं और है। और कल प्रथम लेसन में हम सब ने ये समझा है कि ये दुनिया हमारा भी घर नहीं है। है हमारा घर है ये दुनिया नहीं, हम ही कहते हैं ये कर्म क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, घर नहीं है। जब ये दुनिया हमारा घर नहीं है तो परमपिता परमात्मा का घर कैसे हो सकता है? परमात्मा के लिए तो हम सदा कहते हैं ऊपर वाला, कहते हैं ना ऊपर वाला देख रहा है, कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ, एक दो को याद कराते हो कि ऊपर वाला देख रहा है। कोई गलत करके और फिर भी झूठ मूठ करके इस दुनिया की कोर्ट से छूट जाता है तब भी हम उसको क्या कहते हैं कि भाई तुम झूठ मूठ करके इस दुनिया की कोर्ट से तो छूट गए लेकिन ऊपर वाले की कोर्ट से नहीं छूटोगे, कहते हैं कि नहीं कहते? परमात्मा को जब याद करते हैं तो हमारी बुद्धि और नजर कहाँ जाती है? ऊपर जाती है ना। ऊपर वाला बैठा है ना, ऊपर वाला कहते हैं, यहाँ वाला नहीं कहते हैं, परमात्मा के लिए ऊपर वाला कहते हैं। और इसलिए उसकी महिमा में हम कहते हैं कि ऊंचे से ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे से ऊंचा तेरा धाम और ऊंचे से ऊंचा तेरा काम, ऐसे कहते हैं ना। तो परमात्मा भी परम धाम के निवासी है। जो हम आत्माओं का असली घर है परम धाम, वो ही परमात्मा का भी असली घर है। और ये विवेक की बात है कि बाप और बच्चों का घर एक ही होता है ना, एक ही होता है कि अलग अलग होता है? असली घर एक ही होता है ना, बाद में अलग अलग होते हैं, असली घर तो एक ही होता है ना। हम आत्माओं का और हमारे पिता परमात्मा का असली घर एक ही है, शांति धाम, जिसको हम परलोक, ब्रह्मलोक, परम धाम, मुक्ति धाम कहते हैं, जहां से पिता परमात्मा कलियुग अंत सृष्टि पर आते हैं और हमें पतित से पावन बनाते। याद रहे, परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं, युगे युगे आते तो कलयुग कैसे हुआ? फिर कलयुग कैसे हो सकता है? परमात्मा ने आकर फिर क्या किया? हर युगे परमात्मा नहीं आते हैं, केवल हर कलयुग के अंत परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और हमें पावन बनाकर वापस असली घर परम धाम ले जाते हैं। तो ये है परमात्मा का सही परिचय, जो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं को बताया है। ऐसे कल्याणकारी, सुखदाता, सदा पावन, अविनाशी पिता परमात्मा को हमें कितना याद करना चाहिए, कितना याद करना चाहिए बताइए? जो थोड़ा ही सुख देते हैं, बाकी दुख ही देते रहते हैं, उन देह के मित्र संबंधियों को कितना याद करते हो? और जो सदा सुख देता है उनको कितना याद करना चाहिए? थोड़ा हाथ से बताओ, कितना याद करना चाहिए? पर क्या हम इतना याद करते हैं? नहीं करते हैं। शरीर भान में आते हैं, शरीर के मित्र संबंधों को याद करते रहते हैं, उस असली अविनाशी पिता को भूल जाते हैं। इसलिए आप सबको पहला पाठ आत्मा का परिचय दिया। अगर खुद का परिचय याद रहेगा तो पिता भी याद रहेगा। तो हम सभी 5 मिनट बहुत प्यार से और पूरी एकाग्रता से शिव बाबा की याद में बैठेंगे। उसके बाद आपको कुछ सूचनाएं दी जाएंगी और जिन मेहमानों ने गिफ्ट नहीं ली है, किस किस ने नहीं ली है हाथ ऊपर करें, तो वो मेहमान रुकेंगे, आज उनको गिफ्ट मिलेगी, फिर बाद में कोई गिफ्ट देने का प्रोग्राम नहीं होगा, इसलिए योग के बाद सभी रुकेंगे, सूचनाएं सुनेंगे और उसके बाद केवल वो मेहमान बैठे रहेंगे जिन्होंने गिफ्ट नहीं ली है। सभी अलर्ट होकर व्यवस्थित बैठ जाएं। कमर सीधी रखकर बैठेंगे तो आप थकेंगे नहीं। भल कुर्सी सोफा के बैक का सपोर्ट लीजिए पर स्ट्रेट बैठे। कल आपको बताया था इस प्रकार अपना डायरी फाइल पर्स बैग साइड में रख दे, एक दो से अलग अलग होकर बैठेंगे। आंखें नेचुरल खुली रहने दे, हमें साइलेंस में बैठकर मन ही मन बहुत प्यार से शिव बाबा को याद करना है। हमें उनसे कैसे बातचीत करनी है, याद करना है, मैं सजेशन देती जाऊंगी। आपको मन ही मन वही थॉट रिवाइज करना है, महसूस करना है, अनुभव में स्थित होना है। मैं आत्मा परम धाम के निवासी हूँ। मेरा असली घर शांति धाम है। पिता परमात्मा भी परम धाम के निवासी हैं। मैं मन की आंख से असली घर परम धाम में, असली पिता परम ज्योति बिंदु शिव पिता को देख रही हूँ। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता अनेक जन्मों से भक्ति में मैं आपको खोजती रही हूँ। दर दर भटकती रही हूँ। मैं तन से भटकती रही, मन से भी खोजती रही हूँ। आप कितने कल्याणकारी हैं। मेरे शिव बाबा, आप खुद सृष्टि पर आते हैं, ब्रह्मा तन में दिव्य प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा मुख से सद्ज्ञान देते हैं। मैं आत्मा आज बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे आपका सही परिचय अब प्राप्त हुआ है। आपके सद्ज्ञान को पाकर मेरे मन का अंधकार समाप्त हुआ है। मुझे अपार हर्ष है। मुझे स्पष्ट है कि मैं कौन हूँ और आप कौन हैं। जीवन का सही ठिकाना मुझे मिल गया है। मेरे प्यारे शिव बाबा, अब मेरा यही लक्ष्य है जिन गुणों के आप सागर हैं, जिन शक्तियों के आप अखुट भंडार हैं, जो सत्य ज्ञान आप हमें देते हैं, मुझे आपके सत्य ज्ञान सर्वगुण आपकी सभी शक्तियों को मुझे अपने जीवन में धारण करना है। शांति के सागर, शांति दाता, मेरी प्यारी शिव बाबा, आपके संतान में आत्मा भी शांत आत्मा हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। आप शांति दाता है, मुझे भी स्वयं शांत रहना है। शांति दूत बन सर्वत्र शांति फैलानी है। मेरी सर्वशक्तिमान सदा पावन शिव बाबा, आपकी याद से मैं आत्मा शुद्ध बनती जा रही हूँ। आपके पवित्र प्यार से मैं आत्मा पवित्र योगी बन रही हूँ। मैं आपसे योग लगाती हूँ तो मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जाती हूँ। मुझे ये ही निश्चय और खुशी है कि मैं आत्मा आपकी ईश्वरीय संतान हूँ। मैं दिव्य ज्योति चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा शांत हूँ, शुद्ध पवित्र हूँ। अविनाशी अजर अमर हूँ। ओम शांति। ओम शांति।